গৌরাঙ্গ গো নেরনিধি কোথা গেলে পাব, সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দি নরোত্তম সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দা, যে জানিল প্রেম ধন করুণা প্রভ কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, জয় শ্রীবাস পণ্ডিত জয় আচার্য ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত জয় আচার্য ঠাকুর, জয় বাস পণ্ডিত জয় জয় প্রভু পাদ জয় আচার্য ঠাকুর, প্রভু পাদ জয় আচার্য ঠাকুর, জয় গৌরণিতাই 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 জয় গৌরণিতাই জয় জয় কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম জয় বৃন্দাবন ধাম জয় জয় রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা শ্যাম সুন্দর আদি জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ
জয়নিতল কৃষ্ণ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজগাচার্যষ্টদর্শত কৃষ্ণকৃপা শ্রীমতি শিলভায় চরণারণ্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ কি অনন্ত কডি বৈষ্ণববৃন্দ কি নেতাই গুর প্রমনন্দি হরি হরি ওং অজ্ঞান তিমিনন্ধস্য জনঞ্জন শলাকায় সক্ষ্মনিতম জন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ, শ্রীচৈতন্য মনবিষ্ণম স্থাপিতম জন ভূতলে স্বয়ং রূপ কদামিয়ং দদাতি শপদান্তিকম, বন্দে অহং শ্রীগুরু শ্রীযুত পদমলম শ্রীগুরুণ বৈষ্ণবীপং সাগ্রজাত সহগণরগণতম সজীব সাধুতম সবধূতম পরিজন সিংহম কৃষ্ণচৈতন্য দেবম শ্রীরাধা কৃষ্ণপদান সহগণলিতা শ্রীশকান্তম চ নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতী ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতি নামিনী नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतम वंशा कल्पतरुव कृपा सिंधुवेव च पतितानं पावनेव वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुते श्री नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप सर्वकं भक्तावतरण भक्तक्षम नमामि भक्तसत्यम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमस्तुते। तप्त कांचनि गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। आज की कक्षा में प्रातःकालीन सत्र में सबकी हार्दिक स्वागतम है, सबसे विनती है। तो आज हम लोग सुनेंगे परंपरा के अनुसार रथ यात्रा आने वाले हैं, इसके आगे पीछे क्या होते हैं भक्त का गमन। चैतन्य महापुरुष के विरह से भक्त लोग ये रथ यात्रा का आगे पीछे सब देखेंगे, सभी भक्त लोग अपने स्वधाम चले गए। पंचतत्त आत्मकम कृष्णम भक्त रूप सर्पकम भक्तावतरण भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। इसमें भक्ताक्षम पंचतत्व में से जो पंचतत्व है इसमें जो भक्ताक्षम है ये श्रीवास पंडित भक्त रूप की आख्या दिए है उनको। ये शुद्ध भक्त है, नित्य परिकर है। ये तीन भगवत तत्व है, एक शक्ति तत्व है और एक भक्त तत्व है, ये पंच तत्व है। तो ये श्रीवास की देखेंगे कि ये पंच तत्व में श्रीवास को रहने के लिए कितना परीक्षा देना पड़ा। एक दो परीक्षा नहीं, बहुत सारी परीक्षा लिए महाप्रभु, तभी उनको इसी स्थिति में पहुंचे। तो एक एक परीक्षा हम सोच नहीं सकते हैं कि कितनी शरणागत। ये बेंच जो है ना बहुत डिस्टर्ब, पहले से आपको हटा देना चाहिए था, बीच में तीन आगे एक साइड में कर दे तो ठीक होता था। ठीक है, अभी रन दीजिए। तो ये श्रीवास जी को परीक्षा बहुत देना पड़ा, बहुत परीक्षा महाप्रभु से लिए। तो इस श्रीवास जो है श्रीहट्ट निवासी जलधर पंडित, पिताजी का नाम है जलधर पंडित, श्रीहट्ट के निवासी हैं जलधर पंडित नाम से। और पांच पुत्र हैं, सबसे बड़े जो है भाई है नलिनी पंडित है, दूसरा श्रीवास पंडित है, तीसरा श्रीराम पंडित है, चौथा श्रीपति है और पांचवा श्रीकांत है, उनको श्रीनिधि भी बताते हैं। तो ये श्रीहट्टो कहाँ पे है, बांग्लादेश में। जो चैतन्य महाप्रभु के घर है जो एक ही जिला में है, लगभग बहुत सारे अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी से भी एक ही जिला श्रीहट्ट जिला से है। तो अभी सिलेट जिला है, इस्कन के मंदिर भी है। तो उसमें पंडित परा में उनके 8,000 पंडित परा में इनके निवास थे। तो जलधर पंडित इन लोगों का जन्म उधर ही हुआ, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं गंगा के तट पे निवास करूं। तो उन्होंने उस घर को छोड़कर, बांग्लादेश के घर को छोड़कर उन्होंने आगे नवद्वीप में रहने या गंगा के तट पे रहने के लिए दो स्थान में उन्होंने घर बनाए। एक है नवद्वीप में, दूसरी है कुमारहट्टो, अभी उनकी नाम है हाली शहर। और दूसरी नाम है क्या है हलीश्वर की, दूसरी नाम क्या है, चैतन्य डोबा। मगर मट्टी लेते लेते गड्ढे बन गए, बहुत बड़ा कुंड बन गया, इसलिए बंगला में डोबा बोलते हैं। तो छोटे जो होते हैं उसको डोबा बोलते हैं, तो वो चैतन्य डोबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ईश्वर परिपात के जन्म स्थान है, उनकी समाधि है, उधर उनके मंदिर वगैरह सब कुछ है। चैतन्य डोबा अभी तक साक्षी दे रहे हैं। निकट में गंगा है, दोनों जगह घर बनाए, कभी कुमारहट्ट में रहते थे, कभी नवद्वीप में रहते थे। तो नलिनी पंडित बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया, ईश्वरी छोड़ दिए। उनके एक ही बेटी थी, वो तो इतना फेमस नहीं बने नलिनी पंडित, लेकिन उनकी जो नाती है वो बहुत फेमस बना। कौन है? नहीं, फेमस कौन बना सबसे? नारायण के बेटा का नाम क्या है? वृंदावन दास ठाकुर। ये नलिनी पंडित की नाती है। तो दोनों पति पत्नी दोनों चले गए थे छोड़ के, शरीर छोड़ के, और चार भाई रहते। इसमें श्रेष्ठ अभी श्रेष्ठ जो बड़े है वो श्रीवास है। तो इधर रहने लगे, पिताजी भी चले गए। तो इनका क्या हुआ, बचपन में बहुत दुष्ट था श्रीवास, बहुत दुष्ट, भक्ति का कोई नाम गंध कुछ नहीं था, बहुत बड़ा दुष्ट था, बहुत लोगों को सताता था, साधु देखने से और ज्यादा, साधु ब्राह्मण पंडित को देखते तो और ज्यादा सताते थे। ऐसे उनकी गोष्ठी था, कोई उनके मित्र थे चार पांच दस लेके, वो ऐसे ही करते थे, सताते थे या ऐसे मजाक करते थे, भक्ति का कोई नाम निशान नहीं। एक दिन 16 साल जब आयु हो गया, तब एक दिन रात को सपने देखा, हे सुधीर ब्राह्मण, तेरा परमायु 1 साल केवल और बचा है, 1 साल बाद तू मर जाएगा। मरने के बाद हर कोई सीरियस हो जाता है। तो उन्होंने और उसमें बताया कि इसके लिए कोई उपाय है तो देखो, आप शास्त्र कलिशंत्र अनुपनिषद आदि दे है, उसमें भगवान नाम करके अपने सार्थक परमार्थ को कर सकते हो 1 साल में भी। तो फिर उन्होंने बहुत सीरियस हो गए, उठे और ऐसे नहीं, देव पुरुष स्वप्न दिखा उनको, देव पुरुष आके उनको आकाशवाणी जैसे वाणी बताया उनको, एकदम सुबह सुबह का जो स्वप्न होते हैं बहुत बहुत सच होते हैं बहुत समय, तो सुबह सुबह ऐसे स्वप्न देखे थे। उसके बाद सुबह हो गया, उठे, बड़ा सीरियस हो गया, अपने पूर्व जो स्वभाव है पूरा परिवर्तन हो गया। उनका मित्र लोग आके कहते, इतना हो क्या गया, बता क्यों नहीं मजाक करता है, क्यों? बहुत सारे अलग अलग कहने लगे, लेकिन इन्होंने कलिशंत्र उपनिषद से मिले, हरेर नाम इव केवलम पलो नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्न था। इसको मिला उन्होंने महापुरुष से पहले ही, ये नाम जपना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप करने लगे और भागवत सुनने लगे। भागवत पढ़ो सदल्लाह कृष्ण नाम, रघुनाथ भट्ट को महापुरु के डायरेक्ट आदेश दिया, भागवत पढ़ो सदा कृष्ण नाम लहो। इन्होंने कृष्ण नाम लेते थे और भागवत सुनते थे। और ये ना हुआ, मरने का टाइम तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी चला जाता है, और जो भजन आदि के समय जो है ये क्लास के आधा घंटा वो जाता नहीं है, जो क्लास देने वाले उसके तो बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन सुनने वाले को ये टाइम पास नहीं होता है। लेकिन ऐसे वो उसके टाइम तो बहुत जल्दी जा रहा था, एक एक दिन में कम हो रहे थे, इसे नाम बहुत अच्छे से नाम ले रहे थे, भागवत सुनते थे। ऐसे करते छाल वर ऐसे उन्हें पूरा परिवर्तन हो गया और उनका मरने का डेट आ गया, 1 साल पूरा हो गया। उस दिन भी जाकर भागवत सुनने गए, हरिनाम किए, भागवत सुनने गए। ये बात कैसे है, जब महाप्रभु आवेश में आ गया, आवेश में आके बोले थे, श्रीवास तेरा याद है, तुझे मैं थप्पड़ लगा के जिलाया था। गंगादास पंडित को बोलता, तेरे याद है गंगा, तू अपने परिवार लेकर रात को जा रहा था गंगा में, तो कोई नाव वाले नहीं थे, तू बहुत रो रहा था कि यौवन स्पर्श करेगा मेरा परिवार, मेरी बेटी है, तो इसलिए रो रहा था, मैं जन्म भी नहीं लिया, गोलक धाम से आके तेरे को गंगा पार कर दिया, और गंगा पार कर तू मुझे बहुत बख्शिश इनाम दिया था, तो इसलिए श्रीवास पुत्र याद है। हाँ, श्रीवास तुरंत कहने लगे कि हाँ प्रभु, मैं एक कथा जो मैं सुनाया, थोड़ा ये कथा उन्होंने सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं बचपन में, मुझे सभी भक्त लोगों को सुना दिया कि ऐसे ऐसे मेरा यह था। तभी सभी मरने का समय बिल्कुल टाइम आ गया, ऐसे ऐसे किनारे में बैठ के सुन रहे थे और समय आ गया, प्राण पकड़ी निकल गए, नीचे गिर गया। महाप्रभु अभी प्रकट भी नहीं हुए इधर, गोलोक वृंदावन से आए, एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मार के उनको दोबारा झिला दिया और नारद मुनि की शक्ति का आवेश कर दिया एक थप्पड़ मार के। ते महाप्रभु को महाप्रभु बोल रहे, तेरे याद है? हाँ याद है, आपने मुझे, मैं मर गया था, आपने झिला दिया और नारद ऋषि की शक्ति का आवेश कर दिया। तो श्रीवास, श्रीवास जो है ये नारद मुनि है और श्री राम पंडित पर्वत ऋषि है, दोनों मित्र है, दोनों मित्र है। तो पर्वत ऋषि श्रीराम है और नारद ऋषि श्रीवास पंडित है। तो ऐसे उन्होंने भक्तों लोग प्रयास किया, ये लोग जब जान गए हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य जो श्रीवास आदि जो भी सीनियर वैष्णव थे, ये लोग पहले से ही जगत के मंगल के लिए हरिनाम करते थे, लेकिन लोग अपनाए नहीं और उनको ज्यादा उनके ऊपर कमेंट करने लगे कि क्या नए नए क्या हरिनाम क्या शुरू कर दिया, पहले तो कभी नहीं सुना था, तो ये लोग बाद में बंद कर दिए। और अद्वैत आचार्य प्रकट हो करने के लिए, महाप्रभु प्रकट करने के लिए, तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। प्रकट होकर जब ये प्रचार शुरू होगा, आंगन सची सची माता के पुत्र रूप में तो महाप्रभु प्रकट हुए, लेकिन जो लीला, ये प्रेम भक्ति की जो लीला है, ये ज्यादा श्रीवास के आंगन में ही हुआ। तो यही जो कीर्तन है, कलयुग की रास है, तो यही कीर्तन आंदोलन, कीर्तन आंदोलन श्रीवास के घर पे शुरू हुआ। तो ऐसे महापुरुष गया से जब आगे, तभी सभी लोग पागल कहने लगे महापुरुष सची माता को। कोई कोई बहुत कुछ बोलते थे कि देखो इनको बांध के रख दो, इनको नारियल पानी पिलाओ, इसमें शीतल तेल लगा दो उनके सिर पे, तो वायुवेदी हो गया। एक दिन श्रीवास आए मिलने के लिए, महाप्रभु एकांत में पूछा, श्रीवास में पागल हो गया? बोला नहीं प्रभु, ऐसे तो पागल होना चाहिए, आप तो कृष्ण प्रेम के लिए पागल है, हम तो संसार के लिए पागल है, तो ये कृष्ण पागल तो होना ही है। रामानंद राय से महाप्रभु कहते तुम्हें एक बातुल अमी द्वितीय बातुल अतएव अमी तुम्हें होई समतुल। बोलता दोनों हम, रामानंद राय से महाप्रभु कहते हैं तुम एक है कृष्ण प्रेम के पागल और मैं एक कृष्ण प्रेम के पागल, इसलिए मेरा हमारा द्वारा समकक्ष है, तुलना होता है दोनों को। तो इसलिए ये तो कृष्ण प्रेम के रियल पागल है जिसके लिए होना चाहिए। तभी महाप्रभु एकांत में बोला तू श्रीवास, तू यदि मुझे बोलता पागल हो गया तो मैं गंगा में सलंग लगा आत्महत्या कर देता। तो महापुरुष भक्त से मिले, इसके बाद श्रीवास के घर पे, इसमें बीच में क्या हुआ, श्रीवास कीर्तन कर रहे थे, भक्त लोग कीर्तन शुरू किया, महाप्रभु अभी तक कीर्तन शुरू नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ, लोग मुस्लिम के राज्य थे, सरकार नवाब हुसैन शाह के राज्य है, तो वो तो ऐसे हिंसुर है और ऐसे मिल गया तो डराया धमकाया कि हिंदू धर्म का इतना प्रचार क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसे नहीं था। तो ऐसे लोग अफवाह मतलब मिले चौराहे में मिल के लोग कहने लगे, श्रीवास की निंदा करने लगे, जो भी कीर्तन कर निंदा करने लगे और कहने लगे कि मैं थाने में गए थे, चौकी में जाके सुना कि ये नवद्वीप में लोग पकड़ने के लिए आएंगे, जो जो कीर्तन को उसे पकड़ के ले जाएगा। तो एक दूसरा कहने लगे, अरे पकड़ने के लिए आएगा तो मैं कह दूंगा हम लोग कीर्तन कभी नहीं करते हैं, वो श्रीवास करता है कीर्तन और हमें डिस्टर्ब भी होते हैं, हमें रात को नींद भी नहीं होती है कीर्तन की वजह से। श्रीधर को भी कंप्लेन करता था, बोले हमें नींद नहीं होती है कीर्तन में, और बोलते हैं उसको पेट नहीं भरता, श्रीवास की जो खाते हैं उसका पेट नहीं भरता, नींद नहीं आती, वो कीर्तन करते रात भर, इसलिए वो डिस्टर्ब फील करते थे। अभी भी है बहुत सारे जगह सिटी में आप कीर्तन करो तो कंप्लेन करते हैं। गीता भवन में या कलकत्ता में एक सेंटर मिला था, तो उसे कीर्तन हो रहा था, बंद कर दिया कीर्तन, ठीक है डिस्टर्ब हो रहा है।
तो फिर भक्त लोग धीरे धीरे कीर्तन करते हैं, भक्तों को जो चलते फिरते हैं बाथरूम के जो आवाज उससे हमें डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे ऐसे कहने कंप्लेन करने लगे, बिल्कुल नहीं सुन सकते कीर्तन, पहले भी था ऐसे। तो वो डर गए, श्रीवासी इस बात उनके कान में आया तो उन्होंने डर गए और अपने एक घर पे बंद होकर बंद करके वो नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, महाप्रभु गंगा के पास में टहल टहल रहे थे और वहां से भाग के आ गया। आके जो ठाकुर जी के घर है दरवाजा छिटकनी लगा के बंद करके वो ध्यान कर रहे थे। श्रीवास को धक्का लगाया, दरवाजा खोला नहीं, वो पूरा ध्यान मग्न हो गए। महाप्रभु एक लात मार के दरवाजा को तोड़ा और ठाकुर जी के सिंहासन में शालिग्राम वगैरह गोद में लेकर बैठ के एकदम साक्षात नरसिंह भाव आ गया, आंख पूरा लाल हो गया। श्रीवास को बोलते तू किसका ध्यान करता है, किसको आराधना करता है, तू प्रत्यक्ष रूप में देख, मैं तेरे सामने प्रकट हूं। आंख खोल के देखते चैत्र जगन्नाथ मिश्र के पुत्र जो है वो पूरा एकदम गर्म होकर साक्षात नरसिंह भगवान जैसे हो गए। तो बोले तू आराधना कर, मेरा पूजा कर, जिसके लिए तू आराधना कर रहा है, जिसके लिए ध्यान कर रहे वो प्रत्यक्ष तू देख ले। तभी आराधना किए और सभी बोला तेरा घर के जो भी परिवार के सदस्य सबको बोला, सब मेरा रूप देखे, सभी पुष्पांजलि वगैरह सब कुछ दिए। इसके बाद तू क्या सोचता है श्रीवास, तुझे पकड़ के ले जाएगा जेवन यमन लग, मुस्लिम पकड़ के ले जाएगा, ती डर गया, मैं रहती है मैं सबको बताऊंगा कि उसको पकड़ के ले, तो भी तो किसी का समर्थ होगा, क्योंकि परमात्मा रूप में सर्वव्यापक प्रभु सदा सर्वदावास इहते संशय जार सेयो जायन भक्त चित्ते भक्त गृहे सदा अवस्थान कबु गुप्त कबु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। सभी के चित्त में है, तो मैं मुस्लिम के चित्त में मैं हूं, मैं बोलूंगा कि उसके श्रीवास्तव को पकड़ के लेके आओ, तब तो पकड़ के ले जाएगा, तो मैं हूं ना, डरता क्यों है, इसके लिए तो कीर्तन बंद कर दिया, ध्यान कर रहा है, मैं हूं ना इधर। और यदि फिर भी कोई पकड़ने के लिए आ जाएगा नाव लेके, तो मैं उस नाव में पहले चोरूंगा और जाके मुल्ला काजी सबको बुला के पूछूंगा कीर्तन माना क्यों कर रहे हो, क्यों कीर्तन के लिए रोक रहे हो, तुम्हारा अल्लाह नाम में तुम्हारा काजी मुल्ला में इतना हिम्मत है, पशु को बुलाओ, चिड़िए पक्षी को बुलाओ, और जो भी है गधे गधे घोड़ा हाथी और चिड़िया जितने भी है बुलाओ, तुरंत काजी को बोलो उसे अल्लाह का नाम किसी को बुलाओ, और नहीं बोल पाएगा तो मैं बुला के छोड़ूंगा सबको। तो यदि नहीं बुला सकते तो हमारा कीर्तन के क्यों रोक रहे हो, देखो हमारा ताकत, हमारा सनातन धर्म की भगवान के नाम की, देखो मैं बुला के छोड़ूंगा सबको, तब इसमें हरा दूंगा। तो फिर बोलते हैं तेरा इसमें विश्वास नहीं होता है, मैं जो बताया इसमें विश्वास नहीं होता है कि सभी पशुओं को बुला दूंगा, पशु को नाम चिड़िया को पक्षी को सबको हरिणाम बुला, डाउट हो रहा है। वो नारायणी विधि, कोई बोलता है 2.5 साल, कोई बोलता है 4 साल आयु है, तो बोला परीक्षा, इसी जो कोई भी चीज बनाते हैं ना वो पहले परीक्षा करते हैं, इसके लिए परीक्षा के पात्र पहले कौन है, महापुरुष सबको नाम देंगे, पशु को पक्षी को छोटे वृद्ध बच्चे सभी जातियों को वृक्षों को मधुमक्खी को सबको प्रेम दे, भोरे को प्रेम देंगे, इसके पहले प्रमाण कौन है, परीक्षा किसके ऊपर किया, नारायणी, बोला नारायणी कृष्ण बल के रो, तुरंत नारायण महाप्रभु के मुख से जब कृष्ण मिले, कृष्ण नाम लेकर अष्ट सत्य विकार रोमांचित कंपित गला रुद्र हो गया, विकार हो गए, मूर्छित हो गए, गिर पड़े, अष्ट सत्य विकार हो गए, तो उनको परीक्षा करके दिखाया। इसी प्रकार उनके घर पे फिर कीर्तन प्रारंभ हो गया, कीर्तन प्रारंभ, कीर्तन करते हैं महाप्रभु, तो कीर्तन करके कभी कभी उनके घर पे ही स्नान करते हैं, कभी कभी गंगा में जाके स्नान करते हैं। तो जब गंगा में घर पे स्नान करते हैं उस जल लाने के लिए गंगा जल लाना है, गंगा जल से स्नान करना है, तो उनके घर पे एक काम करने वाली थी जिनके नाम थे दुखी। श्रीवास जी ने कह दिया कि जाओ दुखी, महापुरुष स्नान करेंगे, इसे जल लेके आओ। तो भक्त घर में नगर बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है। महाप्रसाद मिलेगा, हरिनाम मिलेगा, भगवान की सेवा करना मिलेगा, भगवान के लिए मार्केटिंग करना है, भगवान के लिए मार्केट करेंगे, घर में घर भगवान है, फूल लाना है उनके लिए फूल लाना है। तो इसी प्रकार भक्तों के घर पे, और ये तो विग्रह नहीं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु की सेवा उनको मिल गए। तो इसलिए कोई सेवा को प्रेम से करना है। तो उन्होंने प्रेम से चल के आती थी और महाप्रभु के कीर्तन होते थे। कीर्तन में खरा नहीं हो सकती है क्योंकि उनकी एक नगरानी है, वो देख नहीं सकते, उनको जो आज्ञा है उसके ही करना है। तो उन्होंने जल लेके आते थी, आते समय सजल नयन से एक बार कीर्तन के दर्शन करते थे, फिर पुनः पुनः जल वही आने, बार बार जाके जल लेके आती है। तो महाप्रभु ने सोच लिया आप सेवा कैसे पीछे करो, कहां पे करो, ऐसे नहीं कि सबको अल्टर में जाना पड़ेगा। वो कोई पीछे बहुत दूर कोई सामने ही नहीं जाते हैं, लेकिन प्रेम से सेवा करते भगवान बुला लेंगे उसको। तो ये गरीब है, नगरानी है, छोटी सी लड़की है, महाप्रभु के सामने नहीं जा सकती है, लेकिन महाप्रभु तो उनके पास जा सकते हैं ना। महाप्रभु नहीं आ सकते लेकिन महाप्रभु तो उनके पास जा सकते हैं ना। तो महाप्रभु की इच्छा हुई कि ये तो प्रेम से जल लाती है और मेरे श्री विग्रह के स्नान के लिए, तो महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उसको भी श्री विग्रह बोलते हैं। तो महाप्रभु जहां अंगन में बहुत कम से कम 108 घड़ा तो चाहिए उन्हें नहाने के लिए, पूरा मिट्टी के घड़े में जल ला, गंगा जल लाला के सजा के रखे थे कुंभो मिट्टी घड़ा। तो श्रीवास के उधर महाप्रभु उनको ये बनाने के लिए महाप्रभु गए और श्रीवास से पूछा, श्रीवास मैं जो स्नान करता हूँ उसे जल कौन लेके आती है? बोलते प्रभु, वो श्रीवास की भूल गए, बोलते दुखी प्रभु। दुखी दुखी कैसे है? मैं मेरे लिए जल लेके आती हूँ, दुखी कैसे हो सकता? भगवान की सेवा तो, इसलिए जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो दुखी है, वो दुखी है। भगवान की सेवा करने वाले दुखी, तो आपके रियल आप सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी अपने अंदर है। जो सेवा करने वाले वो कभी रुखी दुखी हो ही नहीं सकती है। तो बोले दुखी नहीं, ये सुखी है, मैं इनका नामकरण संस्कार करूंगा। गरीब थी, माता पिता नाम दिया दुखी। महाप्रभु बोले नहीं सुखी है, कोई दुखी नहीं बोलना पुकारना इनको, आज से इनके नाम सुखी है, तब से सुखी। तो ये समझ लेना कृष्ण सेवा करने वाले को भी दुखी नहीं हो सकता है। यदि मान प्रतिष्ठा वो स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं तभी दुखी हो सकता है, लेकिन ऐसे निष्काम भाव से प्रेम से सेवा करेगा तभी दुखी नहीं हो सकती है, सुखी मिलेगा। तो सुखी सभी लोग भूल गया, तभी वृंदावन दास ठाकुर थोड़ा कठोर शब्द यहां पे लिखा, प्रेम जोगे भजिले कृष्ण पाई, माथा मुरैले जम दंड नजराई। बोला प्रेम योग, जो भी सेवा करेंगे इसके साथ क्या जोड़ना है? प्रेम योग जोड़ना है। प्रेम उसके प्रेम से देने से पत्ता भी खा लेगा, प्रेम नहीं है छप्पन भोग भी ठुकरा देगा, देखेंगे नहीं वो श्रीवास। एक बात में वो मांग रहा था, देता नहीं, श्रीवास श्रीधर के बारे में आते, भक्ते द्रव प्रभु चाहिया चाहिया खाए, अवक्ते दुर्बेर पोती फिरिया न चाय। भक्तों के द्रव्य प्रभु मांग मांग के खाते, नहीं दी तो छीन के खा जाते हैं, नहीं देंगे तो छीन के खा जाते हैं, और अभक्त के द्रव्य आप कितना भोग भी लगा देखेंगे भी नहीं। अभक्त द्रव्य प्रभु फिरिया ना चाहे, देखता भी नहीं है, इसलिए प्रेम योग जो भी अर्पण करना है उसमें तुलसी पत्ता और तुलसी पत्ता के साथ में प्रेम योग जोड़ना है। जगदानंद पंडित बोलता है प्रेमे कृष्ण भजे से ही बापेरे ठाकुर प्रेम शून्य जीव केवल छाचेर कुकुर। बोला प्रेम प्रेम योग के साथ जो भजन करते हैं वो पिताजी को भी पूजन पिताजी को भी पूजनीय है और जो प्रेम शून्य है वो छाछ पीने वाले कुत्ते हैं। प्रेम शून्य जो भी सेवा कर रहा है प्रेम नहीं उसमें। इसी प्रकार वो बोले कि प्रेम जो भजिले कृष्ण पाई नहीं तो सेविंग करो कुछ भी करो कुछ नहीं। प्रेम योग चाहिए भले बाल कितने बड़े हो लेकिन प्रेम योग चाहिए। तो इसी प्रकार विद्या विद्या धन कुले कुले किचु नए भक्ति जगह भजिले कृष्ण तुष्ट है। धन ज्ञान विद्या ज्ञान पंडित कुछ नहीं उसमें भक्ति जो के साथ तभी कृष्ण तुष्ट होंगे। इसी प्रकार दुखी की कथा। फिर दूसरी कथा है कि एक बार महाप्रभु परीक्षा कर रहे हैं श्रीवास पंडित को परीक्षा कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके घर पे रहते थे उनके घर पे हमेशा रहते थे तो महाप्रभु आके कहने लगे अरे तुम तो भला आदमी हो तुम कहीं अच्छा बुरा विचार नहीं करते हो ये अवधूत का क्यों हमेशा रखते हो ना इसका जाति का कोई ठिकाना है ना इसका जाति का कोई ठिकाना है ना कुल है ना पिताजी है ना कोई आचरण है कोई आचरण है इसका। तो जैसे फ्लाइट है फ्लाइट जो होते हैं ना उसके आचरण ये ट्रैफिक रूल नहीं पालन करेंगे वो तो जो ऊपर महानुभाव जो है प्राकृत दोषेतर दोष न जन्म है जो महानुभव होते हैं प्राकृत दोष में उनको दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार उन्होंने परीक्षा के लिए अवधूत को क्यों रखते हो हमेशा इसको निकालो नहीं तो तुम्हें अच्छे जो ब्राह्मण है तुमको ये अच्छे ब्राह्मण से गिनेंगे नहीं एक साथ में आपको एक घर कर देंगे आपको कोई मिलेगा नहीं आपको ना आपके घर पे कोई आएगा ना आपको कोई कार्य में आपको बुलाएगा इसको निकाल दो यदि आप भला चाहते हो ये अवधूत को जल्दी जल्दी निकालो। श्रीवास गंभीर हो गया गंभीर हो गया प्रभु आपको ये उचित नहीं है कि हमें अब परीक्षा करें। एक दिन जे तोरे भजे से ही मोर प्राण नित्यानंद तोर देह मोते नहियान। बोलते जो एक दिन गौरांग का भजन करता है एक दिन प्रेम से गौरांग का भजन करते हैं श्रीवास बोलते वो भक्तो मेरे प्राण की बराबर है। और नित्यानंद की बात करते हो ये तेरा ही देहो है तेरा ही इसमें मुझे आन मतलब मुझे कोई संशय नहीं है नित्यानंद और आप एक हो। महापुरुष नित्यानंद स्वयं बोला तुम ही देहो मैं प्राण हूं देहो प्राण भिन्न नहीं यही तो प्रमाण देहो बोला मैं देहो अलग हूं लेकिन मेरे अंदर प्राण नहीं है प्राण तो आप ही हो। इसी प्रकार कहते हैं कि वो आपका जो एक ही है आप इसमें मुझे कोई भेद नहीं है तो फिर भी जवानी यदि स्त्री लोग लड़के लोगों को हाथ पकड़े यदि दारू पिए कोई भी चला जाए इससे गंदे स्थान में चले जाए यदि मेरा जातीय प्राण धन यदि मेरा प्राण भी नष्ट हो जाए मदिरा जबने जो धरे नित्यानंद तथापि अमर मने न हे वो मंद। जवनी स्त्री के हाथ पकड़े या मदिरा पिए फिर भी मेरे मन में संशय नहीं होगा मेरा जाति मेरा प्राण मेरा धन नष्ट कर दे फिर भी मेरे मन में संशय नहीं होगा। इसलिए बहुत लोग सोचते हैं मेरा जाति चला जाएगा मेरा धन चला जाएगा तो वो बोलता मेरा प्राण भी चला जाए, फिर भी नित्यानंद के मन में नित्यानंद पति मेरा एक भी तिल संशय नहीं हो सकते हैं। तब महाप्रभु इतनी प्रसन्न हो गए, इतनी प्रसन्न हो गया, बोलते उसके साथी में चढ़ गए, चढ़ के बोलते क्या बोला श्रीवास, नित्यानंद पति तो रे अति को विश्वास, नित्यानंद पति तो इतना विश्वास है, इतना विश्वास नित्यानंद के पति, बोला तू मुझे खरीद लिया, तू मुझे खरीद लिया, आज मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करूंगा, तेरे घर पे कोई वस्तु की, दो बार श्रीवास के बात महाप्रभु कहे कि कोई भी वस्तु का कम नहीं होगा, मैं स्वयं यदि लक्ष्मी जी के भंडार में भी कभी कम पड़ जाए, लेकिन तेरा आदित्य आचार्य के घर में कुछ कम नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं दूंगा। और दूसरी बार तेरे घर के दास दासी कुत्ते बिल्ली ये भी मेरा स्थिर भक्ति प्राप्त करेगा। स्थिर भक्ति क्या होते हैं, जो मन भगवान छोड़ के भगवान की सेवा छोड़ के कभी विचलित नहीं होता उसको बोलते स्थिर भक्ति। स्थिर अस्थिर सभी समझते हैं, हमारा नाम लेते लेते कहां भाग जाता है, फिर किसके लाओ, फिर भाग जाता है, फिर किसके लाओ, फिर भाग जाते हैं, वो स्थिर भक्ति। तेरे कुत्ते है तो कुत्ते को, तेरे बिल्ली है तो बिल्ली है, तो तेरा टेलर को भी महाप्रभु बोले तो उनका टेलर है, उनके जो दुखी है, जो भी दास दासी जो भी है, सबकी स्थिर भक्ति प्राप्त होगी। तब महाप्रभु उनको ऐसे आशीर्वाद दिए। फिर महाप्रभु एक दिन भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन श्रीवास की बेटा इतना बीमार था, इतना बीमार था, मरने ही वाले थे, लेकिन महाप्रभु को न मैसेज किया न फोन किया कि प्रभु आज कीर्तन नहीं हो सकती है, या कि ये मैसेज जानने भी नहीं दिया उनको, मेरे बेटे की तबीयत खराब है जानने भी नहीं दिया उनको। हर दिन की बात ही महाप्रभु आगे कीर्तन प्रारंभ हो गया। श्रीवास के पुत्र तो कौप शरीर छोड़ेगा कोई ठिकाना नहीं है, माताएं लोग बैठ बैठ के सांस गिन रही हैं। तो कीर्तन प्रारंभ हो गया, अंदर घर पे एक कमरे में कीर्तन हो रहे थे, कीर्तन मंच में, और दूसरे घर में वो रोने का आवाज आ गई, रोने का आवाज आ गए। श्रीवास को तो पता है कि घर पे ऐसे सीरियस कंडीशन है, तो वहां से प्रणाम करके चले गए। जाकर देखा पुत्र के देहांत हो गया, चार माता रो रही हैं, एक उनकी जो पत्नी है श्रीवास की, उनकी नाम क्या है, मालिनी, और श्रीराम की पत्नी, श्रीपति की पत्नी, श्रीकांत की पत्नी, और उनके साथ भी रहती थी इधर बहुत समय। तो ये लोग सभी लोग घेर कर रो रही थी, आवाज में वो आ गए और आके वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी स्त्री लोग कहिते लागे ले ना पुनी। बोला परम गंभीर श्रीवास कैसे है, श्रीवास की स्थिति क्या है, परम गंभीर भक्तो महातत्व ज्ञानी, गंभीर नहीं, महाप्रभु की भाषा वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि परम गंभीर है भक्तो और महातत्व ज्ञानी है। स्त्री लोग के कहने लगे, तुमरा आप लोग तो सब जानते हो कृष्ण की महिमा को, तो जानते हो अंत समय में जिसका नाम कान में पहुंचे तो भगवान के धाम चले जाते हैं, आज वो स्वयं नामी स्वयं चैतन्य महाप्रभु और उनके अद्वितीय आचार्य जो अनन्य भक्त लोग हरिदास ठाकुर आदि महा महासव भक्त लोग यहाँ पे महा संकीर्तन कर रहे हैं, इसमें मेरा पुत्र के देहांत हो गए, ये रोना नहीं चाहिए, ये तो आनंद की बात है। तो सोमवार सोमवार रोदन चित्त देव क्षमा, बोला रोना बंद करो, शांत हो जाओ, तुम लोगों का रोना श्रवण करके यदि महाप्रभु का कोई डिस्टर्ब हो गया, उनके इसमें बाधा आ गया, तब पुत्र तो गया तो गया, मैं भी गंगा में एक घड़ा बांधूंगा गले में और छलांग लगाऊंगा। घड़े बांधते हैं, बड़े घड़ा बांधेंगे तो वो भर जाएगा, डूब जाएंगे, तो यदि वो जीने भी चाहेगा तो आखिरी में वो जी नहीं सकते, उठने बहुत ऊपर आना गंगा जल के अंदर से बहुत कठिन है, इसलिए घड़ा बांध लूंगा मैं, घड़ा बांध के मैं गंगा में छलांग लगा के कि महापुरुष, ये संभव नहीं है कि मेरे परिवार के द्वारा मेरा द्वारा महापुरुष स्वयं सच्चिदानंद घन की आनंद में बाधा और श्रीवास जिंदा रहेगा, हो नहीं सकता है, ये मैं नहीं देख सकता हूं कि मेरे घर से महापुरुष के आनंद में बाधा हो रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता इसको। तो इनकी पत्नी जानती थी कि इनकी ऐसे शरणागति है श्रीवास के या भगवान के पति, तो कपड़े डाल दिए मुख में, आंखों से पानी गिर रहा, रोना बंद कर दिया। श्रीवास ने कह दिया कि आप लोग ये तो रोना है, रो मना नहीं करता, महापुरुष चले जाने के बाद संसार धर्म के लिए कितना भी रोना है तो रो, मैं मना नहीं करता। तो आगे आकर फिर कीर्तन कर रहे हैं, जैसे दूसरे दिन कीर्तन करते हैं ऐसे ही कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते महाप्रभु, बहुत समय हो गया, महाप्रभु कहने लगे अमर चित्त कैमन जान करे किछु की होयाछे पंडितेर घरे। बोले मेरा चित्त ऐसे कैसे कैसे लग रहा है, कुछ मेरे मन में लग रहा है कि कुछ ना कुछ दुर्घटन अघटन घटन हो गया श्रीवास के घर में। श्रीवास फिर भी श्रीवास, मतलब एक बिंदु मलिनता उसमें नहीं है, कभी कभी भाग तो लेते हैं लेकिन मन में चिंता रहती है उनको, वो भी नहीं है। जैसे मुस्कुराते थे दूसरे दिन ऐसे श्रीवास मुस्कुरा रहे हैं। तो श्रीवास ने क्या कहा, श्रीवास कहे प्रभु मोर कौन दो जार घरे सुप्रसन्न तुमारो श्रीमो। बोले श्रीवास बोलते हैं प्रभु मेरा क्या दुख है, आप प्रसन्न है, आप खुशी है, आप सुखी है, मैं कैसे दुख हो सकता है। तो फिर भी महाप्रभु नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तभी महाप्रभु वो श्रीवास मना किया था कि मेरे घर पे महाप्रभु को तो पता नहीं लिखना ही नहीं चाहिए, जो कीर्तन सुनने आया उसी में भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक दिबाई दिबाई सबको पता, महाप्रभु को छोड़ के सबको पता लग गया। वो बड़े दुखी प्रकाश दुख प्रकाश कर रहे थे, बोले ये की बेटा है वो भी चल बसा, बहुत दुखी, सभी मन ही मन दुखी हो रहे थे, प्रकाश तो महाप्रभु के सामने कर नहीं सकते। लेकिन तभी महंत लोग कह दिया कि प्रभु श्रीवास के पुत्र के देहांत हो गया। महाप्रभु इस बात को सुनकर जिन आकाश से गिरी, महाप्रभु तुरंत सिर में हाथ देकर बैठ गए और अजहर नयन में रोने लगे कि महाप्रभु के विचार हो गया कि मैं सन्यास इसको सभी को छोड़ के सन्यास ले लूंगा। बोलते इसी भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, जो पुत्र शोक है, पुत्र मर गया, जो एक बिंदु तक मलिन नहीं हुआ इनके मन में, ऐसे प्रेम करने वाले भक्तों को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूं। महाप्रभु अजहर नयन में रो रहे थे और श्री नित्यानंद आदि समझ गया कि महापुरुष सन्यास के बारे में सोच रहे हैं। तभी महापुरुष ने पूछा कितना समय हुआ, बोला आराई प्रहर ढाई प्रहर, एक प्रहर कितने घंटे में, तीन घंटे में, साढ़े सात घंटा पहले शरीर छोड़ चुके हैं, साढ़े सात घंटा पहले शरीर छोड़ चुके हैं, फिर भी श्रीवास के। तभी महापुरुष गए जहां पे बेटा सोया हुआ है, प्राण त्यागा हुआ शरीर है और माताली घेर कर रो रही है, क्योंकि श्रीवास तो इस भौतिक सुख दुख सुख के ऊपर चले गए, लेकिन ये माता लोगों को ये करने के लिए वो बच्चे से महापुरुष जाकर पूछे बच्चे श्रीवास के घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, तुरंत तो लेटा हुआ था उठा बैठा, बैठ बोले प्रभु आप पूछ रहे हैं मेरे से, आप निर्बंधो, आप जो समय ये निश्चित करके रखा मैं उतना समय बिता दिया, हमारा समय निश्चित समाप्त तो होगा, एक क्षण मैं यहां नहीं रह सकता हूं, आपके द्वारा निर्धारित किया हुआ है, हमारे कर्म ऐसे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से प्रभु। तो बोले देखो ये माया तुम्हारा माता जी लोग रो रहे, तभी उसी माता लोगों को ये करने सचेत करने के लिए वो बच्चे ने बताया के कर्म मत प्रभु के कर बा प्रभु के करो नंदन सबे अपन अपन कर्म करयो बुंजान। जैसे नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि चित्रकूट के बच्चे को वापस कर दिए थे या जिला दिए थे, इसी प्रकार स्वयं भगवान नारद के पुत्रों को जिला दिया। जिला के वो बच्चे बोल रहा है कौन प्रभु, कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। सभी अपने अपने कर्म भोग करने के लिए एक साथ में हुआ, समय होगा फिर विच्छेद हो जाएगा, कोई किसी का नहीं है। मयिवंश जीवल को जीव भूत सनातन, तो ये तो इसी प्रकार बोले प्रभु निर्बंध चला गया, मैं अभी चला जाता हूं आपके परिकर के, आपके आपके परिकर के चरण में मेरा कटी कटी नमस्कार है। मैं जहां जा रहा हूं वो आपके स्मरण रहे, आपके जहां दास वही मेरा जन्म हो, इतना प्रार्थना करके वो सो गए। तो सभी माता लोग को भी शोक चला गया और उनको लेकर महाप्रभु गंगा में प्रवाहित किए। आने के बाद महाप्रभु सोचने लगे कि श्रीवास तुम तो संसार की रीति को जानते हो, ये संसार में यही नियम है कि पीछे से खत्म होते जा रहे आगे से जुड़ते जा रहा है, यही है संसार, पीछे से खत्म होते जा रहा है आगे से जुड़ते जा रहा है, कोई किसी का नहीं, पीछे वाला कोई भी आके पूछेगा नहीं कि भाई तुम कैसे हो। तो बोले संसार श्रीवास तुम तो संसार की रीति को जानते हो। बोला तुम्हारा क्या संसार के ये लगेगा, तुमको जो स्मरण करेगा उसके भी नहीं लगेगा, संसार की दुख खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने महाप्रभु समझ लिया कि इतनी बड़े महान त्यागी, आप देखो महाभारत में अर्जुन रोया, भीम रोया, कितना पति का कितना फटकार कर रहे थे, बच्चे मर गए तो, लेकिन ये बिंदु मात्र नहीं है। तो महापुरुष सोच इनके क्या गिफ्ट प्रदान करे, तब बोले कि मैं मुझे दे दू, बोला ये कम हो जाएगा। तो बोलते हैं आमी नित्यानंद दुई नंदन तुमार चिते तुमी व्यथा किछु ना भावियो यार। बोले मैं और नित्यानंद आज से तुम्हारा बेटा हूं। और नित्यानंद ऐसे ही थे, मालिनी जब तक वो छोटे दो ढाई साल का बच्चा जैसे हाथ से नहीं खाते है, नित्यानंद भी नहीं खाते थे कभी। वो कितना साल की हो गया, 24 मान लीजिए 21 साल और 12 32 33 साल नित्यानंद की आयु है, तो वो भी हाथ से नहीं खाते थे, मालिनी अपने पुत्र के जैसे खिलाते थे, वो खिलाती थी। तो दोनों बोला मैं यार नित्यानंद आपके पुत्र हूं, मैं थोड़ा दूर रह दो, नित्यानंद हमेशा आपके घर पे है। वो एक चक्र नहीं गया और कभी गया ही नहीं। तो इसी प्रकार वो बोला मैं और नित्यानंद आपकी पुत्र हूं आज से, ये महाप्रभु उनको गिफ्ट दे दिया, अमर पुत्र को छोड़ दिया, अमर पुत्र मिल गया। तो श्रीवास प्रभु चार भाई महाप्रभु को महाप्रभु जी के चरण में गिरकर बोलते हैं, तो उनकी हृदय में जब महाप्रभु अपने आपको दे दिया, इतना उनकी इनकी इतनी प्रसन्नता हुई, आंखों से प्रेम अश्रु गिरने लगे। चार भाई महाप्रभु के चरण पकड़ के बोलते जन्मे जन्मे तुम्हें माता पिता पुत्र प्रभु तुम्हार चरण जन ना पाषाणी कब जेखाने सेखाने प्रभु केन जन्म नाय तुमार चरणे जन प्रेम भक्ति राय। पर जन्म 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 में आप मेरे माता हो, आप मेरा पिता हो, आप मेरा पुत्र हो, आप ही मेरा बंधु हो, आप ही मेरा नाता, सभी नाता जो है आपके साथ है। बोलते गीता, गीता में पितामह सुदाता माता धाता पितामह, कृष्ण बिना बंधु नहीं जीवित जीवन बड़ा बंधु है। इसलिए सभी बोलता सभी न तो आप है, आपके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं, और मेरा कहीं पे जन्म हो जाए कैसे भी हो जाए लेकिन आपके चरण कमल मेरा प्रेमा भक्ति रहे, यही एक ही प्रार्थना है। आप तुम्हारे चरण में प्रेमा भक्ति, एक ही प्रार्थना भक्त की है कि आपके चरण में मेरा प्रेमा भक्ति रह जाए। तो समय हो गया, क्या करे, और तो बहुत सारे बच्चे थे। तो इस प्रकार श्रीवास एक बार चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके जब वापस आए तो श्रीवास नवद्वीप में बड़ा विरह होता था, महाप्रभु नहीं तो कुमारहट्ट में ज्यादा रहते थे। कुमारहट्ट में महाप्रभु आए और कुछ व्यावहारिक बात पूछने लगे, व्यावहारिक बात पूछने लगे तो बोला श्रीवास तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है, तुम कुछ काम धाम करो, काम धाम नहीं करे तो संन्यास ले लो, कैसे बेकार बैठे बैठे खाते हो, तो कुछ तो करना चाहिए ना, इतना बड़ा परिवार है कैसे। बोला प्रभु हम कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई काम धाम हम नहीं कर सकता हूँ, आप मैं तो भजन करूंगा बस ऐसे नहीं, कुछ आजकल की समय है। बोला कोई कुथा ना गेले ना आईले एक बट मात्र ना ही मिले, बोला कोई जाओगे नहीं वही भिक्षा विक्षा के लिए काम धंधे के लिए नहीं, बोले एक बट थोड़ा सा पैसा नहीं आने वाला है, आजकल के जमाना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कलेक्शन सिस्टम रखा कि जाना पड़ेगा बाहर। बोले ये बोले कि महाप्रभु बोल रहे एक बर्ड भी नहीं मिलने वाला, वो बैठे रहोगे तो ऐसे कैसे कुलाओ, बोले कैसे मेंटेन कैसे करते हो, अपना चार भाई उनकी पत्नी है नौकर भी रखा हुआ है कैसे मेंटेन करते हो, कोई काम धंधा नहीं। तो महाप्रभु एक परीक्षा के लिए एग्जाम्पल ही बोल रहे थे, भाई दी भाई तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। बोला प्रभु मुझे खाना नहीं मिलेगा, तीन ताली लगाया श्रीवास, एक दो तीन। महाप्रभु बोलते इसका अर्थ क्या है, अर्थ यही है प्रभु खाना नहीं मिलेगा तो एक दिन देखूंगा उपवास रहूंगा, दो दिन रहूंगा, तीन दिन रहूंगा, तीन दिन के बाद भी मैं उपवास रहूंगा तो गंगा में छलांग लगा के आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि ये भगवान की वचन झूठा हो जाएगा। अनन्न चिंतन ते माम ए जना प्रवर्षते तेषां नित्यवियुक्तानां यज्ञक्षमं वहामि अहम्। तो ऐसे बोला तो महाप्रभु बहुत बहुत खुश हो गया, ये अभी आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मी यदि भिक्षा करे तेरा कोई वस्तु की कभी कम नहीं होगा। तो पद है जे जन चिंते मोरे अनन्न होइया तार भिक्षा देही अमी माथाय ओ बोहिया। बोलते अनन्न अन्न सब कुछ छोड़कर केवल भगवान के चिंतन करते हैं, भगवान को तो बोलता है मैं शीर में ढूंढोगे उसके मैं उसको खिलाता हूं, जो मेरे चिंता करता है किसी का द्वार में नहीं जाते हैं, सर्वसिद्धि आकर वहीं पे मिलते हैं। अच्छा लाइट जब जलते हैं ना वो कीड़े के पास लाइट को जाना नहीं पड़ता है, अपने सब प्रकाश में सभी भाग्य आते हैं। इसी प्रकार वो ऐसे भक्ति करके मतलब जो आपको जाना कहीं नहीं पड़ेगा, आप अनन्य होकर चिंता करते तो मेरा चिंता करते हो सारा सिद्धि आपको सब कुछ आके आपके घर पे आके मिलेगा, धर्मो अर्थो काम जो भी कुछ है सब कुछ मिलेगा। मैं अपने सुदर्शन चक्र भी उसके रक्षा के लिए, उसके अपने रक्षा के लिए प्रतिरक्षा के लिए कोई जरूरत नहीं है, मतलब मेरा सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करेगा, वो नो टेंशन, केवल माला लो नहीं बार बार देखो कि नौ को बजा नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो धर्मो अर्थो काम सभी है और सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र है, सब कुछ रक्षा करेगा, महाप्रलय भी नष्ट नहीं कर सकते उसको, भक्तों को महाप्रलय जैसे आप पूरी में देखते हैं क्या कल्प वृक्ष कल्पवट वो नष्ट नहीं होता है, महाप्रलय में नष्ट नहीं होता है, ऐसे ही भक्तों भी नष्ट महाप्रलय में नष्ट नहीं होगा। तो जे मुहर दासेर करेन स्मरण ताहारे करी मुई पालन हो पोषण। ठीक है मेरा स्मरण करेता तो जो श्रीवास जैसे भक्तों की यदि कोई स्मरण करते हैं महाप्रभु कहते उसको भी मैं पालन पोषण करता हूं। इसके लिए अभी समझ में आ गया क्यों हम आज इस श्रीनिवास की कथा सुने, किसलिए सुने, कि महापुरुष कहते जो मेरा दासों का स्मरण करेगा उसका भी मैं पोषण करूंगा। इसके लिए हम इनके आज इनके बारे में सुना हूं। मोर दासर जी करे स्मरण ताहारे करी मुई पालन पोषण, महापुरुष ग्रांटी दिए कि ऐसे मेरा दास को भी स्मरण करने से भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए बार बार उसी तिरुभाव तिथि में आविर्भाव तिथि उनकी कथा सुनी जाती है, ये कारण है, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय है, अपनी कथा से भी ज्यादा प्रिय है। तो यह विराम देते हैं, 5 मिनट अधिक हो गया। तो श्रीवास की देहांत के बारे में डायरेक्ट कोई ज्यादा वर्णन नहीं है। तो आज ही इनकी तिथि है कि श्रीवास अपने जिसको छोड़कर भगवत धाम अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया। तो पांचों का शरीर तिरुभाव तिथि मनाते हैं गदाधर पंडित के श्रीवास की, लेकिन उनकी शरीर नहीं है, समाधि वगैरह नहीं होते इनके, दिव्य शरीर है पांचों के पंच तत्व। तो जय श्रीवास पंडित के, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, जय समस्त श्रद्धा बिंद भक्त बिंद की, नितायूर प्रेमानंदी।